ओम शांति। अव्यक्त मुंडली 15 नवंबर 2016। पहला प्रश्न, बाप का साथ वंडरफुल बात कैसे है? पहला प्रश्न है, बाबा का साथ, भगवान का साथ, ये सबसे आश्चर्यजनक, आश्चर्यकारक, वंडरफुल, अद्भुत बात है कैसे? तो क्या कहेंगे? भगवान का साथ मिलना, उसकी कंपनी प्राप्त हो जाना, ये सबसे वंडरफुल बात है। क्यों? सबसे पहले तो उसको जानना ही वंडरफुल बात है, उसको समझना, उसको जानना, उसको पहचानना, और फिर उसको साथी बना देना, उसके साथ का अनुभव होना। जीवन की यात्रा में ऐसा साथी मिल जाना। अब तक जितने साथी मिले वो आए और चले गए, नश्वर साथी थे सभी। ये एकमात्र ऐसा साथी है जो अविनाशी है, और उसका साथ प्राप्त होने के बाद और किसी देहधारी का, किसी भी मनुष्य का साथ की जरूरत नहीं है। तो ये साथ वंडरफुल क्यों है? अदृश्य है साथ, परंतु फिर भी साथ का अनुभव होता है। दिखाई कुछ नहीं देता है, परंतु फिर भी आत्मा में बल इतना है कि कोई परम शक्ति और सत्ता उसके साथ साथ चल रही है। तो यह अनुभव कि मैं अकेला नहीं, मैं अकेली नहीं, परंतु वो परम सत्ता, वो परम शक्ति, जहां जहां मैं जा रहा हूं वहां वहां वो मेरे साथ है, सदा बाप की याद की छत्र छाया के अंदर। फिर वो कलयुग की समस्या है, उस पहाड़ जैसी हो जाएगी जो पहाड़ नहीं रहा परंतु छत्र छाया बन गया। और इस साथ की क्या विशेषता है? ये साथ अदृश्य है, ये साथ अद्भुत है, ये साथ थोड़े से समय के लिए और अभी मिलता है, और किसी कल्प में किसी समय ये साथ नहीं मिलेगा। ऐसा अनुभव अगर अब नहीं किया तो कभी नहीं हो सकता है। और इस अनुभव की वो स्मृति ही द्वापर से फिर जागेगी, और वहां फिर हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की खोज करेंगे, और वहां पर भी अनुभव करेंगे कि वो हमारे साथ है। इसी साथ के आधार से वहां पर शास्त्र लिखे जाएंगे, कहानियां लिखी जाएगी, सर्वव्यापी भी उसे कह देंगे, वो सारी कहानियां लिखी जाएंगी जिसमें उन सब व्यक्तित्वों का वर्णन होगा, उस सब व्यक्तियों का वर्णन होगा कि जिन्होंने भगवान का साथ लिया या भगवान ने उन्हें साथ दिया। और सारी दुख दर्द पीड़ा ये साथ मिलते ही थकान जो है आत्मा की, आत्मा थकी है अंदर से। ये थकान भी बहुत अदृश्य है, शरीर थका हुआ नहीं है परंतु आत्मा में थकान है। आत्मा अंदर ही अंदर बहुत थक गई है। ये जो थकान है, ये जो अदृश्य थकान है, इस अदृश्य साथ से मुक्त, साथ से वो थकान समाप्त हो जाती है। और
नया जन्म मिल जाता है
इस साथ से, नया जन्म, मर्जीवा जन्म। आज भी बाबा ने कहा है, तुम्हारे तीन प्रकार के बचपन हैं। एक तो वो बचपन जिसमें लौकिक माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, एक दूसरा बचपन जहाँ गुरु के द्वारा तुम दीक्षित या शिक्षित या तुम शिष्य बनते हो, तब का वो जन्म। अज्ञानंद तिमिरांधस्य, गुरु के लिए कहा जाता है वो अज्ञान मिटाने वाला है, तिमिर मिटाने वाला है, ज्ञानांजनश्चरकया, ज्ञान का अंजन लगाने वाला है। चक्षुरिन मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नया चक्षु देने वाला है। ऐसे गुरु के द्वारा जो जन्म है वो दूसरा जन्म लौकिक का और तीसरा यहाँ अलौकिक जन्म जहाँ ईश्वर के बच्चे तुम बनते हो। तो यहाँ ये तीसरा जन्म होता है, इसको भूलना नहीं तो रोना पड़ेगा, नहीं तो माया की चोट लगेगी, नुकसान हो जाएगा। कुसंग सत्संग में रहना है और सत्संग अभी मिलता है, ये साथ ही सत्संग है। इस साथ के अतिरिक्त जो भी साथ थे यह है वो सभी कुसंग में आ जाते हैं। परमात्मा का साथ सत्संग है, कुसंग से नुकसान, कुसंग से रोना पड़ेगा। तो प्रश्न है बाप का साथ वंडरफुल बात कैसे है, और क्या कहेंगे, ये साथ क्यों वंडरफुल है, क्यों अद्भुत है। सर्व प्राप्तियों की अनुभूति एक से हो जाती है, वो एक मिला सब मिला, उस एक में सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियां, सर्व संबंधों का सार, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, किसी और के पास जाने की आवश्यकता नहीं। और उसका साथ एक विश्वास है, उस साथ में एक अद्भुत सा विश्वास, वो साथ निश्चिंत कर देता है, बेफिक्र कर देता है, वो साथ हल्का बना देता है, वो साथ आत्मा की पीड़ा हर लेता है, वो साथ बोझ समाप्त कर देता है, वो जो भारीपन था वो निकल जाता है, पुरानी स्मृतियां भी समाप्त हो जाती है। नया साथ, नई उमंगे, नया साथी, सब कुछ नया नया हो जाता है जीवन में, नएपन की बहार आ जाती है। और क्या हो जाते हैं उससे साथ से, और शाश्वत सुख मिलता है उससे। ये साथ ऐसा है कि इससे शाश्वत सुख, शांति, आनंद, प्रेम की अनुभूति होती है। और जैसा वो है वैसे हम बन जाते हैं। और भी कुछ है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, अंधा भी देखने लग जाता है, बुका भी बोलने लगता है, मुकम करोति वाचालम पंगु लंघयति गिरिम तत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। अंग्रेजी में वो कविता है, सुनी है सबने, फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड। क्या होता है उसमें, एक व्यक्ति, एक भक्त स्वप्न देखता है कि वो रेत पर चल रहा है, समुद्र किनारे पर जो रेत है, जो बीच है, उस बीच पर वो चल रहा है, और वो देखता है कि उसके जीवन की ही जैसे वो यात्रा है। पीछे मुड़कर देखता है कि सेट ऑफ फुटप्रिंट्स, दो उसके पैर और दो और पैर हैं जो भगवान के हैं, और वो चल रहा है। और फिर देखता है जब उसके जीवन में मोस्ट सैडेस्ट आवर्स ऑफ द लाइफ, ट्रबलसम आवर्स ऑफ द लाइफ, उसके जीवन के जो सबसे दुखदायक क्षण हैं, ऐसे क्षणों में, ऐसे अवसर पर केवल दो ही सेट ऑफ फुटप्रिंट है, दो गायब हो गए। तो वो भगवान से कहता है कि जब मैं बहुत दुखी था, वैसे तो तुम जीवन भर साथ थे, साथ साथ चल रहे थे, मैं था और तुम थे, परंतु जैसे ही मैं दुखी हो गया, जैसे ही जीवन में विपदा, पीड़ा, समस्या आई, तुम कहाँ गुम हो गए। उस समय तुम्हारे पैरों के निशान थे ही नहीं, केवल मेरे ही दो पैरों के निशान दिख रहे थे। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया, भगवान ने क्या कहा, वो तेरे नहीं मेरे थे, मैं तुम्हें क्या कर रहा था, कंधों पर उठाकर तुम्हें चल रहा था। जब उसका साथ मिलता है तो वो बहुत कुछ कर देता है, हमें पता भी नहीं होता है कि वो कर रहा है, उसके हिसाब से नहीं होगा, पर जैसे तुम सोचोगे वैसे नहीं होगा, जैसे वो सोचेगा वैसे होगा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम्हारा कल्याण किस में है। तुम केवल कल्याण को जानते हो, वो परम कल्याण को जानता है। तुम केवल स्वार्थ को जानते हो, वो हमारे परम स्वार्थ को जानता है। हमारा परम कल्याण किस में है वो उसे पता है, हमारी तो छोटी सी दृष्टि है, ट्यूब्यूलर विजन, इतना ही हम देख पाते बस। ये ऐसी परिस्थिति है, इसमें ऐसा होना चाहिए, परंतु वो नहीं देखता है, वो कुछ और देखता है। हो सकता है वही बाधा थी जिससे वो तुम्हें छुड़ाना चाहता है। हम सोचते ये चीज नहीं छूटनी चाहिए, बहुत अच्छी है, चाहे स्थान, चाहे व्यक्ति, चाहे कोई सेवा, परंतु वो छूटने के बाद ही परम कल्याण का मार्ग वो प्रशस्त करना चाहता है। इसलिए उसका साथ, उसकी कंपनी, उसका ये सामिप्य परम कल्याणकारी है। विदेश में एक संत हुआ है, सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी, इटली का महान संत, सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी। उसके जीवन में दिखा है, शायद ही विदेश में कोई ऐसा संत हुआ होगा जिसकी इतनी महिमा है। 13वीं शताब्दी में वो पहले सिपाही था, अपने देश के लिए लड़ने जा रहा था और घोड़े को पानी पिलाने के लिए रुकता है, बाकी सेना आगे जाती है, उसे जैसे आवाज आती है कि सेंट फ्रांसिस गो बैक, वापस जाओ। वो दिव्य आवाज उसे सुनाई देती है, डिवाइन कॉल उसकी युवा अवस्था में, और वो वापस जाता है। उसको कहता है गो एंड रिपेयर माय हाउस विच इज इन रुइंस, जो मेरा घर जो है जो जर्जर हो चुका है, ऐसी जर्जर अवस्था में मेरा घर है, उसको जाकर मरम्मत करो। वो जाके सोचता है किसकी मरम्मत करूं और कौन सा घर और किसका घर। उसे लगता है ये आवाज मनुष्य की नहीं थी, भगवान की थी। उसके पिता, उसकी माँ सब विरोध करते हैं उसका, वो कपड़ों की सिल्क मर्चेंट है, बहुत उसको समझाते, नहीं मानता है, सड़कों पर जैसे भिखारी बन जाता है, एक एक पत्थर जमा करता है। और उस गांव में जो चर्च होता है, उस चर्च का पुनः निर्माण करता है, सब कुछ छोड़ देता है। फ्रांसिस इन ऑर्डर एक नए जैसे मार्ग की स्थापना करता है, जहां उनके दो नियम होते, एक ब्रह्मचर्य और एक गरीबी, दरिद्रता, पैसे को टच नहीं करेंगे, और एक नए संन्यास धर्म की स्थापना करता है उस क्रिश्चियनिटी में। तो उसके जीवन में दिखाया है कि जब वो अंत अवस्था में है, उसके बहुत सारे शिष्य, बहुत सारे आश्रम मठ बन चुके हैं, उसका जो एक परम शिष्य था इलियास, वो उसको कहता है कि अभी मृत्यु का क्षण है, तुम हंस क्यों रहे हो, हंसो नहीं, लोग क्या कहेंगे, इतने सारे खिड़की के बाहर तुम्हारे इतने सारे शिष्य, आप इतने बड़े संत हो। वो कहता है कि मैं जीवन भर ईश्वर के साथ जिया हूं, ईश्वर के साथ रहा हूं, और अभी भी मुझे कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, हाउ कैन आई स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम सिंगिंग एंड डांसिंग। और क्रिश्चियन में ऐसा ही एकमात्र ये संत होगा जो गाते हुए और नाचते हुए जिसने देह का त्याग किया। परमात्मा साथ, ऐसा साथ है कि जीवन तो उस संगीत में, उस नृत्य में बीतता ही है, परंतु मृत्यु भी वो मृत्यु नहीं रहती, परमानंद, परम संगीत, परम ध्वनि बन जाती है, परम नाद। सब कुछ चला जाए, खुशी ना जाए। तो ये पहला प्रश्न था, बाप का साथ, वंडरफुल बात, कैसे। दूसरा प्रश्न, बच्चों की थकावट के लिए बाप दादा का उत्तर क्या है, थक गए, कैसी अदृश्य थकान है। भगवान ने क्या कहा, कोई योगी आत्मा उसे मिला दो, कितने समय के लिए, 5 मिनट भी अगर मिल जाए, थोड़े समय का संग महान आत्मा होगा, आत्मा को लक्ष्य दे देगा और आत्मा में शक्ति भर देगा। उस दिन भी देखा था ना कि छोटे थोड़े थोड़े संग के लिए आत्माएं संपर्क में आई, रत्नाकर डाकू संपर्क में आए नारद के, तो वाल्मीकि बन गया। वो अंगुलिमान संपर्क में आए महात्मा बुद्ध के, थोड़े से समय के लिए, जिसे किसी ने परिवर्तन नहीं किया, वो केवल एक क्षण मात्र संग से परिवर्तन हो गई आत्मा। वैसे ही दिखाया था वो गिरीश घोष बंगाल का, इतना बड़ा साहित्यकार, परंतु दिन रात डूबा रहता था नशे में, दारू में। थोड़े से संपर्क, समय के लिए संपर्क में आया रामकृष्ण के, जीवन परिवर्तन हो गया। बताया था उस मदई और जगई का, दो भाई, जैसे ही संपर्क में आए चैतन्य महाप्रभु के, जीवन बदल गया। आत्मा अंदर से थकी है, परंतु ये नहीं दिखाती हम थकी है, उनकी थकान अभिव्यक्त होती है कुकृत्य से, दुष्कर्म से। और जैसे ही महान आत्माओं का संग उन्हें मिलता है, 5 मिनट भी, थोड़ा समय भी, जैसे नरक में नरकवासियों को युधिष्ठिर का संग, तो ये सारी बातें ये सिद्ध करती है। जैसे ही योगी आत्मा के संग में आत्माएं आती है, तो उनकी थकान मिट जाती है। तो बाबा ने थकावट के लिए, बच्चों की थकावट के लिए बाप दादा का उत्तर क्या है, तो एक उत्तर तो ये हुआ कि योगियों से मिलाओ, योगियों का संग। दूसरा उत्तर है ऐसे महान स्थान का संग, ऐसे श्रेष्ठ स्थान का संग, अगर आत्माओं को मिल जाए। उस स्थान पर आते ही वहां के वाइब्रेशंस, वहां की तरंगे, प्रकंपन और किरणें थकान को हर लेगी, थकान को खींच लेगी, वो टेंशन डिफ्यूज कर देगी, वो स्ट्रेस समाप्त हो जाएगा, वो जो टॉक्सिन्स है वो डिटॉक्स हो जाएंगे। ऐसे स्थान की भी महिमा है। तो वो हुआ दूसरा। तीसरा, थकान मिटाने के लिए क्या किया जाए? बाबा क्या कहते हैं कि तुम्हारी जिससे थकान मिट जाएगी, वो थकान कम हो जाएगी, वो दूसरा प्रश्न है, अगर रुचि और प्यार से चक्र लगाओगे तो। और बोझ उसे दे दो, वो खड़ा है, पर वो देने की विधि, वो प्रक्रिया, वो टेक्निक, वो तरकीब, वो किमिया भी तो आनी चाहिए। कैसे दे? वो कोई वस्तु तो है नहीं कि उसको दे दिया कि लो और उसने कहा ले ली। कितना बड़ा समर्पण भाव उसके अंदर चाहिए, तुम ले लो। क्योंकि बाहर उठाकर देखा थकान बढ़ती गई। छोड़ो तो छूटे, परंतु छूटता नहीं। वो पंछियों ने खुद ही डाली पकड़ के रखी है, इतनी जोर से पकड़ के रखी है, और फिर चिल्लाते हैं स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता, और फिर चिल्लाते हैं बाबा बचाओ बाबा छुड़ाओ। पकड़ा खुद है, परंतु फिर भी छुड़ाते, पकड़े, छोड़ना नहीं चाहते। ये भी कैसी विडंबना है। क्या हम वास्तव में थकान से मुक्त होना चाहते? पहला प्रश्न तो ये है। या यही थकान से प्यार हो गया है और अच्छा लगता है, क्योंकि ये थकान एक कारण है जिसका हम बहाना दे सकते हैं, प्रिटेक्स्ट, एक एक्सक्यूज है कि आत्मा अंदर से थकी है। और किसको बहाना दे रहे? स्वयं स्वयं को ही बहाना दे रहे। और अच्छा भी लगता है इसमें। सबसे पहला है संकल्प कि मुझे मुक्त होना है इस थकान से, बहुत हो गया। ये जो आध्यात्मिक थकान, इस थकान से मुक्ति। और कोई मार्ग थकान से मुक्त होने का? बोझ उसको दे दिया और उसको साथ ले लो, तो बोझ कम हो जाएगा। और कोई मार्ग?
ज्ञान का कोई ऐसी खुशी का
पॉइंट, ज्ञान की खुशी की पॉइंट, पॉइंट समझ, पॉइंट देना, ऐसी पॉइंट बुद्धि में धारण कर लो, वो एक पॉइंट ही हल्का कर देगी, वो थकान को मिटा देगी। और गीत, प्यार के गीत गाओ, खुशी के गीत, प्यार के गीत, उमंग उत्साह के गीत, गीत बाप दादा गीत माला सुनने आए हैं। वो जो गीत माला प्रोग्राम था उसमें काउंटडाउन रहता था, काउंटडाउन सयानी, किसकी आवाज थी वो, जिसकी आवाज, हाँ, अमीन सयानी, सारे भारत को मंत्र मुग्ध कर दिया था जिसकी आवाज ने, अमीन सयानी। तो वो जो गीत माला था 50s और 60s के दशक में, तो बाबा भी ऐसा गीतमाला सुनना चाहते हैं। हमारी आवाज उसे बहुत अच्छी लगती है, हमारी आवाज उसे सबसे प्रिय है। संसार के जो नामी ग्रामी गायक है उनकी आवाज उसे प्रिय नहीं है, हमारी उसे बहुत अच्छी लगती है। तो हारे थके मुसाफिर के चरणों को धोकर पी लेने से मैंने अक्सर यह देखा है मेरी थकान उतर जाती है। एक कविता है जिसमें ऐसा लिखा है, हारे थके मुसाफिर के चरणों को धोकर पी लेने से, जो दूसरा थका हुआ है, हारे थके मुसाफिर के चरणों को धोकर पी लेने से मैंने अक्सर यह देखा है मेरी थकान उतर जाती है। कोई ठोकर लगी अचानक जब जब चला सावधानी से, पर बेहोशी में मंजिल तक जा पहुंचा हूं आसानी से। हरिवंश राय बच्चन की शायद ही कविता है कि दूसरों की थकान मिटा दो तो तुम्हारी थकान मिट जाएगी। हाँ, दूसरों की सेवा करो, थकान हो जाए। कौन सी थकान? देह की थकान नहीं, आध्यात्मिक थकान, स्पिरिचुअल फटीग। ये जो स्पिरिचुअल फटीग है, दूसरों की सेवा चालू कर दो, कोर्स कराना चालू कर दो, स्थूल सेवा चालू कर दो, समझाना चालू कर दो, प्रदर्शनी समझाओ, म्यूजियम समझाओ, कुछ भी करो, परंतु इस थकान से मुक्त होना है। हारे थके जो है उसके चरणों को धोकर पी लेने से मेरी थकान उतर जाती है।
पहले गांव में से मेहमान आते थे उसको गर्म पानी से स्नान धुलाई करते
थे। तो दूसरों की थकान मिटाओ तो स्वयं की मिट जाएगी, दूसरों को ज्ञान सुनाओ तो स्वयं में ज्ञान का जन्म होगा। वो ज्ञान प्रकाश है, कल भी कहा था शाम को रात को, वो प्रकाश है, उस प्रकाश में रहना है, निरंतर वो प्रकाश रहे। प्रकाश कम हुआ कि अंधकार आएगा, और फिर संघर्ष अंधकार से जो कि अंतहीन है, कभी समाप्त नहीं होता है, इसके लिए प्रकाश। तो बच्चों की थकावट के लिए बाप दादा का उत्तर है, उसे योगी उसे मिलाओ, दूसरों के अनुभव सुनाना, अनुभव सुनना। कभी कभी क्लासेस सुनना इतना अच्छा नहीं लगता है, उस समय है सबसे बेस्ट अनुभव सुनना, किसी का जीवन ही सुन लेना, ये अनुभव है उसके जीवन का, कैसी शक्ति भर देता है। क्लास कब तक सुनते रहेंगे, क्लासेस बहुत सुन ली, अनुभव सुनो, जीवन सुनो। वो जीवन अर्थात एक किताब पढ़ने जैसा है, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। गोपी शेर, बाप दादा हर्ष है। अव्यक्त मिलन से एक और रौनक में कैसे आ जाते हैं, रौनक अर्थात तीसरा प्रश्न, अव्यक्त इस मिलन से एक और रौनक में कैसे आते हैं निखिलेश भाई, रौनक अर्थात क्या, चमक, और रौनक अर्थात शोभा, एक शोभा आ जाती है,
निखार
आ जाता है। और कैसे आएगा ये, इस मिलन से कैसे ये रौनक आता है, जोश आ जाता है, पावर आ जाती है, उमंग उत्साह आ जाता है, खुशी में मनी मन मन मयूर नाचने लगता है, आत्मा हर्षित हो जाती है। और ये कौन घुंघरू चमका, ये कौन चांद चमका।
आगे
आगे मंजू बहन को पता है। ये कौन घुंघरू चमका, ये कौन चांद चमका, ये धरती पे आसमान आ गया पूनम का, ये कौन पंछी चहका, ये कौन फूल महका, महफिल में देखो खुशबू उड़ी दिल जो मेरा बहका, लो तन में जान आई होठों पे तान आई, मेरी चकोरी चांदनी में करके स्नान आई, बिछड़ा वो मीत आया जीवन का गीत आया, दो आत्माओं के मिलन का दिन पुनीत आया, सूरत है मेरे सपनों की तू सोहिनी, जमुना तू ही है तू ही मेरी सोहिनी, तेरे बिन फीका फीका है दिल का जहां, तू छिपी है कहां, मैं तड़पता यहां। दो आत्माओं के मिलन का दिन पुनीत आया, महफिल में जैसे वो आ गया तो रंग बदल गया महफिल का, तो रौनक उसके आते ही पतझड़ में जैसे क्या है, बहार आ गई। तो इस मिलन से एक और रौनक में आ जाते हैं। फिर चौथा प्रश्न है, राज्य में कौन कौन सी एडिशन हो।
कमलेश भाई,
कमलेश भाई, बाबा ने यहाँ स्थूल बातें पूछी है, स्थूल बातें, राज्य में एडिशन कौन कौन सी हो बताओ, अगर कोई कमी है तो बताओ, बाप पूरी कर देंगे। राज्य तैयार हो चुका है, पहले तो फुटप्रिंट ब्लूप्रिंट पहले ही तैयार हो जाता है, बाद में आ जाती है स्थूल चीजें। तो उस दिन भी चर्चा कर रही थी, कुछ सूक्ष्म चीजें चाहिए कि हम है नहीं परंतु कल्पना है ये कि ये हो, जैसे कि कौन हो वहां पर, पहले तो बाबा हो, मधुबन हो, मुरली हो, परिवार हो, ये ग्लास हो और क्या हो सतयुग में क्या क्या हो, ये तो सूक्ष्म चीजें हैं। स्थूल चीजें भी चाहिए थी उस दिन, खाने की वस्तु गिनाई, पहनने की वस्तु गिनाई, और कमलेश भाई क्या क्या एडिशन होनी चाहिए, चिंतन किया ना, आपका होमवर्क है, बोलो ना। तो ये तो ऐसे ही चिंतन का विषय है। चौथा पांचवा प्रश्न, सदा उड़ते रहने का आधार, श्याम भाई क्या है, उड़ना है, उड़ने के लिए क्या चाहिए, उमंग उत्साह चाहिए, दो पंख चाहिए, एक तो उमंग का पंख, उमंग उत्साह के पंख चाहिए, हिम्मत का पंख चाहिए, और ज्ञान योग के पंख चाहिए, और याद और सेवा के पंख चाहिए, कर्म और योग के पंख चाहिए, और रिफाइंड पेट्रोल चाहिए, और गंभीरता और रमणीकता, ये दोनों का बैलेंस चाहिए। ऐसी जो आत्मा है बेहद के वैराग्य और सदा राज्य अधिकारी, उनमें ये दोनों ही चीजें होगी। कल का वरदान था ना, कल का वरदान था लास्ट लाइन। और उड़ने के लिए क्या चाहिए, हल्कापन चाहिए, सच्चाई और सफाई चाहिए, और प्यारी अवस्था चाहिए, निर्लिप्त अवस्था चाहिए, यहाँ की कोई आकर्षण आकर्षित ना करे। आज का वरदान है ना मंजूबेन, क्या वरदान है आज का, सहज योगी, सदा योगी, स्वतः योगी, श्रेष्ठ योगी, कर्म योगी, इन पांच चीजों का आधार क्या है, युक्तियुक्त, बंधन मुक्त, ऐसी और दो बातें हैं, आत्माभिमानी शरीर से परे अशरीरी अवस्था, युक्तियुक्त अशरीरी, आत्माभिमानी अशरीरी, युक्तियुक्त और बंधन मुक्त स्थिति चाहिए, तो फिर ये योगी बनेंगे पांच। तो कोई आकर्षण आकर्षित ना करे, ड्रेस टाइट नहीं चाहिए उड़ने के लिए, बाबा ने कहा है लूज, देह अभिमान ये ड्रेस है, अभिमान भान अहंकार ड्रेस है, मिट्टी वाली ड्रेस नहीं चाहिए, हल्की ड्रेस चाहिए, फरिश्ते वाली ड्रेस चाहिए, तब उड़ सकेंगे। आत्माभिमानी स्थिति चाहिए, देहाभिमान वाली स्थिति है तो कैसे उड़ सकेंगे, विकार वाली स्थिति है तो कैसे उड़ सकेंगे, व्यर्थ की स्थिति है तो कैसे उड़ सकेंगे, और नकारात्मक स्थिति है तो कैसे उड़ सकेंगे, विकार व्यर्थ और निगेटिव से परे आत्माभिमानी स्थिति अगर है तो आत्मा ऊपर उड़ सकती है। यहाँ से लंगर उठा हुआ, कोई आकर्षण आकर्षित ना, कोई कोई बांधे हुए ना हो, सारे बंधन छूटे हुए हो, किसी ने पकड़ा हुआ ना हो, जीरो बैलेंस, सारे कर्मों के हिसाब किताब चुकती हो चुके हो, उपराम साक्षी भाव हो, ये ड्रामा में साक्षी स्थिति हो हमारी, कहीं इन्वॉल्वमेंट ना हो, सब कुछ कर रहे है परंतु निर्लिप्त अवस्था है, किसी से कोई लेना देना नहीं, ऐसी वैराग्य की अवस्था है अंदर से, एक की याद में मगन अवस्था है, निर्मोही लवलीन लवली अवस्था है, तब कहीं जाकर हम उड़ सकेंगे। सदा खुश कैसे रहे, सबको पता है, इसको छोड़ देते हैं, सब है ना सब बहुत ज्यादा खुश है, उड़ रहे खुशी में,
पॉइंट किसको था?
कुछ ये सदा खुश कैसे रहे किसको था, हाँ कहाँ है अशोक भाई, सदा खुश कैसे रहे, बाबा की याद करो, ठीक हो गया, उसने सब आ गया, प्रकृति हमारी मददगार कैसे बनेगी, डॉक्टर मेधा क्या बने कैसे करेगी, चार विधि बताओ जिससे प्रकृति हमारी मददगार बन जाए। ठंड बहुत हो पर हमें ठंड ना लगे, गर्मी बहुत हो पर हमें गर्मी ना लगे, बारिश बहुत हो पर हम सुरक्षित रहे।
ठंडी का प्रकोप बढ़ गया
प्रकृति जीत बनने के लिए सबसे पहली विधि है समान, मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ। दूसरी विधि है ग्रेटिट्यूड, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव। तीसरा उससे प्यार। चौथा सकाश, धन्यवाद देना उसको, उसको सकाश देना, उसकी सेवा करनी। और उसको और एक चीज, उसको प्रदूषित नहीं करना किसी भी रीति से, हमारे वजह से प्रदूषण ना फैले। चॉकलेट खाया और रैपर फेंक दिया कहीं पर भी, पॉलिथीन कहीं पर भी फेंक दिया कहीं पर भी, हमारे वजह से यह प्रकृति दूषित प्रदूषित प्रदूषण ना फैले, चाहे आवाज का, चाहे पानी का, किसी भी चीज का, वेस्ट, कोई भी प्रदूषण ना हो।
उपयोग नहीं करो,
उपयोग करो। बाप को मजा किसमें आता है?
बच्चों से मिलने में
उसे अच्छा लगता है, मजा आता है। होमवर्क देने में उसे बहुत मजा आता है, और वरदान देने में, दृष्टि देने में, भरपूर करने में, शक्ति भरने में, खुशबू लेने में, बच्चों की खुशबू लेने में या खुशबूदार बनाने में, बच्चों से बात करने में। देखा है तुमको बाबा रूहों से प्यार करते, तो प्यार करते प्यार लुटाते, खुद को लुटाते, खुद को बंधन में बांधते, बांधने में भी उसे मजा आता है। वो निर्बंधन स्वयं को बांधता है स्वयं ही, और नाच नखरे देखने में, गीत सुनने में, बच्चों के गीत सुनने में, उल्हाने सुनने में भी उसको थोड़ा, टोली देने में, टोली फेंकने में, टोली खाने में, खिलाने में, मुरली चलाने में, सजेशन देने में, सुझाव देने में, ऑर्डिनेंस निकालने में, बाप आए हैं ऑर्डिनेंस निकालने का, महाशत्रु हुए फतवा जारी करा है, किया है फरमान, तो ऑर्डिनेंस निकालने में, ऑर्डर करने में, सुझाव देने में, सजेशन देने में, ऑप्शंस देने में। देखो भाई जितना हो सके याद करो, ऐसा भी कहा है कभी कभी, जितना हो सके बाप को याद करो, कभी सजेस्ट करता है, कभी ऑप्शन देता है, कभी बताता है, कभी अपना ओपिनियन देता है, मैं बाप ऐसा सोचते हैं आपने याद करना चाहिए, अलग 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 अलग, फिर तुम्हारी मर्जी। और मेरी दाढ़ी की लाज रखो, और अलग अलग बच्चों की पोज देखता है अमृत वाले, कोई इधर गिरा कोई उधर, कोई यहाँ कोई वहाँ अभी इसको संभालू कि उसको संभालू, इसको संभालने बाबा भागते तो उधर वो गिरा एक नीचे गिरता है एक पीछे गिरता है। आप क्या कह रहे थे उस दिन, एक भाई नीचे गिरता था जमीन पर नींद के, तो उसको पूछा ऐसे क्यों कर रहे हो, कहता है धरती को सकाश दे रहा तो बहाने सुनने में तुरंत जवाब आ गया बुद्धि में आपके जैसा तो ऐसा तो बाबा को और किसमें मजा आता है कुमुद्दे, बाबा को मजा किसमें आता है? देखने में, बच्चों को केवल देखने में उसको मजा आता है, देखना उसे अच्छा लगता है। कल कहा ना बच्चों के, छोटे बच्चों को क्या देख रहा है, भ्रुकुटी में मणि देख रहा है। सका समान देने में मजा आता है, और शक्ति भरने में, श्रृंगार करने में वो श्रृंगार करता है, टोली फेंकना, श्रृंगार करना, और जो मूर्छित हो गए उन्हें सुरजित करने में मजा आता है, जो पतित है उन्हें पावन बनाने में मजा आता है। सबको तुम्हारी आत्माओं, तुम्हारे शरीरों को जलाकर, तुम्हारे शरीरों को जलाकर, तुम्हारी आत्माओं को ले जाने बाप आया है, मानो या ना मानो, चाहो या ना चाहो, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। एक भाई पूछ रहे थे बाबा ऐसा रगड़ रगड़ के क्यों ले जाता है मैं तुम्हें पलकों पर बिठा कर ले जाऊंगा, ये भी कहा है, मैं तुम्हें मार कर पीट कर चाहो जबरदस्ती भी ले जाऊंगा, मेरा काम ही, मैं ले जाने ही आया हूँ, मैं को यहाँ रहने, तुमको यहाँ रहने नहीं देने वाले हूँ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। कालों का काल तुमने ही पुकारा था, आओ आओ आओ, तुम्हारे कॉलिंग आउट की वजह से ही मैं यहाँ आया हूँ, तुमने ही पुकारा था। अब देखो, अब झेलो, अब मैं आया हूँ महाकाल बनकर, सबको ले जाऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। तो इसमें भी उसको मजा तो आता ही होगा। जिसने मुझे सर्वव्यापी कहा, एक एक से मैं छोड़ूंगा नहीं, जिसने भी कहा होगा किसी भी भावना से, दैट इज इमटेरियल। क्यों कहा, कैसे कहा, क्या तुम्हारी भावना थी, होगा तुम्हारा प्यार, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। और जिसने मुझे कण कण में 24 अवतारों से पेट नहीं भरा तो टिक्कर पत्थर में मुझे डाल दिया, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं तुमको। वो तुम्हारा जो भी कारण हो, चाहे तुम्हारा कितना भी प्यार हो, पर तुमने मुझे सर्वव्यापी क्यों कहा, गाली हमारा प्यार था एक्चुअली वो, पर उसको गाली लग रहा है, अब उसका हम क्या करें। हमारा तो प्यार ही था। सिया राम मई सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, हमको सबको वो माना, हमने तो प्यार था हमारा, पर हमको क्या पता था उसको आकर वो कहेगा कि हम उसको बुरा लगेगा, ये हमको पता ही नहीं था। चलो मंजू बहन आ जाइए। किसका है फिर? आपका ही है आज मंडे, मंगलवार नहीं है, आप है आज मंडे। हाँ आप है मंडे। ट्यूसडे किसका था? ट्यूसडे उधर है। चलो आ जाओ, बिना तैयारी के कुछ नहीं होता है। आ जाओ आ जाओ। हीरे जवाहरात के व्यापारी जोरी ज्वेलर्स, उनको सकाश देंगे संसार के। ओम शांति। कितने प्रश्न हुए? एक मिनट, 8 प्रश्न हुए, 40 है। अलीबाबा 40 चोर, शिव बाबा 40 प्रश्न।